ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों में आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार केंद्र सरकार के विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के कदम नहीं उठा रही है। भाजपा के विप्लव कुमार देव ने कहा कि 2014 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी तब भारत 5 कमजोर देशों में था। नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समीक्षा में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि 6.5 से 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने रोजगार, नोटबंदी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। डीएमके पार्टी के दयानिधि मारन ने बजट में तमिलनाडु की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उधर राज्यसभा में कांग्रेस के पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। श्री चिदम्बरम ने कहा कि मुद्रास्फीति वास्तविक आंकड़ों से कहीं अधिक है। भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में 8% से अधिक की विकास दर के साथ देश में रोजगार के लाखों अवसर पैदा हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार देश के लोकतंत्र को खतरा और समाज में विभाजन पैदा कर सकने वाली सभी झूठी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों से निपटने की वैधानिक और संस्थागत व्यवस्था मौजूद है। जम्मू कश्मीर में 2023 के बाद से संगठित पथराव और संगठित हड़ताल की एक भी घटना नहीं देखी गई और केंद्र शासित प्रदेश में विदेशी पर्यटकों का आगमन 2.5 गुना बढ़ गया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर की में समग्र कानून और व्यवस्था परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जम्मू कश्मीर ने शांति, प्रगति और समृद्धि का युग देखा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने और राज्यवार प्रवेश परीक्षाओं को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने यह जानकारी राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। भाजपा ने नीट यूजी परीक्षा और बजट पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया। बिहार विधानसभा ने प्रश्नपत्र लीक होने और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और गंभीर मामलों में 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय संकट के कारण राज्य का बजट 2 महीने बाद पेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा के संयुक्त सत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस बल जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को संगठन में शामिल करने की तैयारियां कर ली हैं। पूर्व अग्निवीरों को बल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण और आयु तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 280 अंक की गिरावट के साथ 80,149 पर बंद हुआ। निफ्टी 66 अंक गिरकर 24,414 अंक पर बंद हुआ। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए।